नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग। समय प्रबंधन से संबंधित इस लघु वार्ता में अब तक हमने कुछ सूत्रों पर बात की है, जैसे समय का आदर, संक्षिप्त परंतु सक्षम संवाद, मुख्य बिंदुओं के नोट्स रखना, मुक्त मना होना, समयानुकूल कार्य करना, ऊर्जावान रहना, सार ग्रहण करना, सटीक और अनुकूल उपकरणों का प्रयोग करना, सावधान रहना, प्रवाह के साथ बहना, कर्म प्रशिक्षण और विश्राम का संतुलन बनाए रखना, कार्य कौशल अपनाना, नवोन्मेष अपनाने का प्रयास करना, सदा तैयार रहना, बहुकार्यण अर्थात मल्टीटास्किंग करना, व्यवस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्डर, और प्रतिनिधित्व अर्थात डेलीगेशन, कार्य का आकार के हिसाब से विभाजन करना, कार्यसूची तथा प्राथमिकता का क्रम तय करना, और अंतिम बिंदु था प्रतीक्षा कभी नहीं करना। तो आइए इसके बाद हम आगे कुछ नए बिंदुओं पर विमर्श करते हैं। अगला सूत्र है 100 सुनार की एक लोहार की। समय का सदुपयोग जोश से अधिक होश में होता है। आवेग में आने के बजाय सोच विचार कर समयबद्ध परियोजना बनाकर काम करना अच्छा रहता है। यदि आपको किसी व्यक्ति से कार्य संबंधी निर्देश लेने हो तो घड़ी घड़ी टोकने के बजाय सभी संभावनाएं एक ही स्थान पर एकत्र करके नियत समय पर एक ही बार में विमर्श करें। अनंतर उत्पन्न हुए प्रश्नों को पुनः एकत्र करके संवाद की पुनरावृत्ति की जा सकती है। यहां मैं दोहराऊंगा कि चैट जैसे परोक्ष और अक्षम माध्यम के बजाय समक्ष रहकर रियल टाइम में साक्षात्कार द्वारा स्पष्ट संवाद किया जाना चाहिए। मूल बिंदुओं की तैयारी इसमें और सहायता करेगी। यदि अचानक किसी को टोकना अवश्यंभावी हो भी तो संवाद की स्पष्टता के सूत्र को ध्यान में रखते हुए पहले अपने प्रश्न का पूरा संदर्भ दे दीजिए ताकि दोनों पक्षों का समय बचे और आपको सही दिशा मिल सके। अगला सूत्र है समेकन, समूहीकरण या कंसोलिडेशन। हिंदी की एक कहावत है, 1 और 1 11। समेकन आपका समय भी बचाता है और सफलता की संभावना भी। एक ही चक्कर में कई काम निपटा देने से आपका आगामी चक्कर बच जाता है। बिखरा हुआ सामान एक कंडी, बोरी या थैले में डालकर चलने से आपका हाथ खाली हो जाता है और सामान के मार्ग में बिखरने, गिरने या खोने की आशंका भी घट जाती है। चाहे एक ही दिशा में जाने वाले एकाधिक व्यक्तियों द्वारा कारपूलिंग करने की बात हो, चाहे एक ही परीक्षा देने वाले दो छात्रों द्वारा मिलकर रणनीति बनाकर अध्ययन करने की, एक से भले दो की कहावत ध्यान देने योग्य है। कार्य, वस्तु, व्यक्ति और संसाधन, इनका समूहीकरण करके आप अपने उद्देश्य को कम समय में और अधिक गुणवत्ता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। सूत्र, अन्य मनस्कता यानी डिस्ट्रेक्शन से बचें। समय के सदुपयोग के लिए यह आवश्यक है कि हर काम मन लगाकर किया जाए। विशेषकर बहुकार्यण करते समय सचेत रहना बहुत आवश्यक है। वाहन चलाते समय यदि आप सड़क पर पूरा ध्यान रखते हुए रेडियो सुनते हैं तो वो बहुकार्यण है, लेकिन उस समय सड़क से ध्यान हटाकर फोन पर कुछ ढूंढने लगना मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा है। खाना खाते समय पढ़ना बहुकार्यण है, लेकिन अध्याय पूरा होने तक खाते ही रहना अन्य मनस्कता है। कक्षा में किसी विषय के दोहराव के समय अपने फोन पर कोई सूचना देखते समय ये ध्यान रहे कि प्रवक्ता के अगले बिंदु पर आते ही आपका ध्यान पुनः प्रवचन पर केंद्रित हो और तारतम्य बना रहे। अगला सूत्र है चिड़िया की आंख। अपने लक्ष्य को पहचानिए। कुछ भी हो जाए मूल उद्देश्य से दृष्टि ना हटे। युद्ध में जाते हुए सैनिक पथ की हर शुद्र बाधा को हटाने बैठेंगे तो साथ ही रणांगन तक पहुंच पाएंगे। बारूदी सुरंगों को हटाना अनिवार्यता हो सकती है, किंतु वायु युद्ध में वह भी आवश्यक नहीं है। महत्वपूर्ण कार्य को पहचानिए, उसकी निर्भरता को भी। अन्य सभी अनावश्यक झंझटों की उपेक्षा करके आगे बढ़ते चलिए। महत्वहीन कार्यों को पहचान कर उनमें व्यर्थ हो रहे समय की बचत की जानी चाहिए और लक्ष्य पे दृष्टि बनी रहनी चाहिए। सूत्र, गांव भले ना जाए लेकिन कोस की गिनती रखें। वर्तमान युग सूचना क्रांति और संचार माध्यमों का है, लेकिन ज्ञान सदैव बहुमूल्य है। मेरे एक सहकर्मी कहते थे कि खरीदारी ना भी करनी हो, बाजार जाने पर भाव पूछ ही लेना चाहिए। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। जानकारी भी यदि बिना अतिरिक्त प्रयास के मिल रही हो तो रख लेनी चाहिए। प्रशिक्षण के अवसर का यथाशक्ति सदुपयोग किया जाना चाहिए। अपने कार्य के साथ साथ स्वास्थ्य, पोषण, कौटुंबिक प्रेम, आत्मोन्नति आदि जिस उपयोगी विषय पर भी प्रामाणिक जानकारी मिले, ग्रहण कीजिए। भ्रामक सूचनाओं और शब्दाडंबर के कबाड़ को पहचानकर उससे दूर रहना भी सीखिए। प्रचलित कथनों और कहावतों में बहुत सा अज्ञान भरा हुआ है, उन्हें नकार कर शुद्ध ज्ञान की ओर बढ़ें। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमय। अगला सूत्र, नियोजन, अनुसूची या शेड्यूलिंग। यदि कई काम एक के बाद एक क्रम में किए जाने हों, तो वर्तमान कार्य के चलते हुए भी आप आगामी कार्यों का नियोजन कर सकते हैं। नगर विकास निगम से गृह निर्माण की स्वीकृति लेते समय निर्माण ठेकेदार से भी बात पक्की की जा सकती है। दीवारें बनाते समय छत की सामग्री मंगवा कर रखी जा सकती है और छत बनाने वाले राज मजदूरों को अनुसूचित करके कार्यारंभ की तिथि और समय बताया जा सकता है। इसी प्रकार यदि दो कार्य एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो उन्हें भी यथाशीघ्र नियोजित किया जाना चाहिए। भविष्य के जितने भी कार्य आज नियोजित किए जा सकते हैं, किए जाएं। कैलेंडर, ईमेल आदि के सदुपयोग का सूत्र भी इस संदर्भ में लाभप्रद है। अगला सूत्र, नेपथ्य कार्य। बड़े कार्यों को नेपथ्य में चलाते समय छोटे छोटे कार्यों को निपटाया जा सकता है। बैंक कर्मी का कंप्यूटर जब दिनारंभ के कार्य में लगा हो, उस समय वो पत्रोत्तर पूरे कर सकता है। दिवसांत के समय दिन भर की पर्चियों, चेकों आदि को एकत्र करना या विवरणियों की जांच जैसे काम किए जा सकते हैं। ये भी एक प्रकार का बहुकार्यण ही है, जिसमें नेपथ्य में हो रहे या अलभ्य कार्य के समय का सदुपयोग कर लिया जाता है। स्वाभाविक सी लगने वाली ये बात भी सबके लिए स्वाभाविक नहीं है, लेकिन अभ्यास से बहुत कुछ संभव है। अगला सूत्र है प्रारूप या टेम्पलेट का प्रयोग। प्रारूपों का प्रयोग बार बार किए जाने वाले कामों को सरल करता है। जिस प्रकार सांचों का प्रयोग करके कुम्हार कम समय में अधिक मूर्तियां दक्षता के साथ बना सकते हैं, या पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों का एक निश्चित प्रारूप होता है जिसमें शीर्षक, मुखपृष्ठ, सारणी, अध्याय, रचनाएं, संदर्भ सूची, पृष्ठ संख्या आदि जैसे गुणधर्म उपस्थित हैं, उसी प्रकार पत्राचार आदि जैसे दोहराए जा सकने वाले अनेक कार्यों में आप प्रारूप का प्रयोग कर सकते हैं। मघा में प्रकाशित आलेखों का भी एक नियमित प्रारूप है। सरल प्रारूप आपके मन में भी रह सकते हैं, किंतु जटिल प्रारूप वर्ड प्रपत्र आदि में रखना अधिक सुविधाजनक है। उदाहरणार्थ, ऑनलाइन पत्रिका की पीडीएफ बनाने के लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक प्रारूप बनाया था, जिसकी सहायता से वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री को नियमित रूप से सरल निर्देशों की सहायता से कोई भी व्यक्ति किसी भी मास की सामग्री की पीडीएफ अल्प समय में बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के बना सकता है। आप भी अपने विभिन्न कार्यों में टेम्पलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। अगला सूत्र है जांच सूची। आपको याद होगा, पहले हमने मुख्य बिंदुओं के नोट्स रखने की बात की थी, वह सामान की सूची थी। जांच सूची उससे थोड़ी सी भिन्न है। नाम के अनुसार ही ये आपके द्वारा किए जा रहे या पूर्ण हो चुके कार्य की जांच की सूची है। वायुसेना के फाइटर पायलट हों या थल सेना के वाहन चालक, वे सब जांच सूचियों का प्रयोग करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शल्य क्रिया के लिए भी एक जांच सूची जारी की है। हम भारतीयों के लिए स्वच्छता एक सांस्कृतिक सामान्यता है, लेकिन मिशिगन के 100 अस्पतालों में किए गए एक अध्ययन के अनुसार वहां की 30% शल्य चिकित्सा से पहले डॉक्टर स्वच्छता जैसे साधारण कार्य में से भी एक पद भूल जाते थे, जो 4% शल्य क्रियाओं में संक्रमण का कारण बनता था। एक सरल सी जांच सूची लगाने से ये 4% संक्रमण घटकर 0 हो गया। आप भी अपने काम की जांच की सूची रखिए। अनेक सामान्य कार्यों की बनी बनाई चेकलिस्ट आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी, जिनमें आप अनुकूल परिवर्तन कर सकते हैं। अगला सूत्र, सर्वश्रेष्ठ को उत्तम का शत्रु न बनने दें। काम पूरा करने का आनंद ही और है, लेकिन अर्थशास्त्र का घटते लाभ का नियम या परेटो के 80-20 का नियम यहाँ भी लागू होता है। साधारण दुकान से खरीदी मिठाई या कुर्सी की बात तो दूर, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या गूगल जैसी सफल कंपनियों के उत्पादों का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि वे भी 100% संपूर्ण नहीं हैं। निर्माता नए नए संस्करणों के द्वारा अपने उत्पाद की कमियों को दूर करके उनमें सुधार करते रहते हैं और ये सुधार निरंतर चलता है, क्योंकि 1000 स्वादिष्ट लड्डू बनाना एक बात है और हर लड्डू को 100% गोलाकार बनाना दूसरी ही बात है। हर लड्डू को ग्राहक के पास पहुंचाने तक उसका सही स्वरूप बनाए रखना समय के संबंध में अतिव्ययी है और उस पर समय व्यर्थ करने से बचना चाहिए। किसी भी कार्य को 100% किया जा सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा किए बिना भी उसे परिणति तक पहुंचाया जा सकता है। 100% संपूर्णता का मूल्य पहचानना सीखिए। उत्पाद को प्रथम 80% स्वरूप में लाने तक यदि 20% समय लगता है और बाकी के 20% में 80% का समय लग जाता है, तो उस समय को स्थायित्व देने में प्रयोग कीजिए। लड्डू खाने में स्वादिष्ट होने चाहिए, उनका आकार कैसा भी हो। सदा सुधार ही करते रहने के स्थान पर पुस्तक की अधिकांश कमियां दूर करके उसके प्रथम संस्करण का विमोचन कराइए और उसके बाद बची खुची कमियां हटाने का काम अगले संस्करण पर छोड़िए, ताकि 100% की आशा में आपका काम ही रुका ना रहे। अगला सूत्र है, अंतिम तिथि से न डरें। मान लीजिए आप कई वर्षों से किसी महापुरुष की जीवनी लिखना चाहते थे, लेकिन व्यस्तता के कारण टालते जा रहे थे। अब एक प्रकाशक ने जीवनी की पांडुलिपियां आमंत्रित की हैं। 3 प्रविष्टियों को 1000 रुपए के पुरस्कार मिलेंगे और सर्वश्रेष्ठ पांडुलिपि को प्रकाशित करने की योजना है। जानकारी आपको विलंब से मिली। अंतिम तिथि में केवल 2 मास बचे हैं, जबकि आपके अनुमान के अनुसार आपको 5 मास का समय चाहिए। ऐसे में समय की कमी से हताश होकर बैठ जाने के स्थान पर चुनौती स्वीकार करके लिखना आरंभ कीजिए। यदि 2 मास में आप 80% काम कर चुके हैं तो प्रविष्टि भेज दीजिए, अन्यथा इस बात के लिए प्रसन्न होइए कि आपका बरसों से टाला जाने वाला कार्य इस बहाने आरंभ हो सका तथा कुछ समय एवं सतत्य बनाकर आप उसे परिणति तक ला सकते हैं। इस उदाहरण में अंतिम तिथि आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बहुत बार अंतिम तिथियां चलायमान होती हैं। यदि आप ठेके पर कोई काम कर रहे हैं तो अपने समय और संसाधनों का आकलन करके अंतिम तिथि के अनुकूलन पर बातचीत कीजिए, क्योंकि प्रायः अंतिम तिथि मनमानी और परक्राम में होती है। तनाव को अपनी प्रत्यंचा बना लें। मैंने जीवन में बार बार अनुभव किया है कि मैं अपने कार्य में सर्वश्रेष्ठ तब था जब मैं बहुत से कामों में एक साथ उलझा हुआ था। प्रतिदिन 6 घंटे की यात्रा वाली नौकरी की बात मैंने पहले की थी। उसके बाद भी मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब रहा जब कार्य परिस्थितियां सर्वाधिक प्रतिकूल थीं। जिस प्रकार अंधेरी रात में एक छोटा सा दीपक भी बहुत होता है, कार्य के तनाव को संकल्प के दीप से चीर दीजिए। आपने भी इतना तो देखा ही होगा कि छुट्टियों के बजाय काम के दिनों में आप अधिक उत्पादक होते हैं। कार्य के तनाव को दक्षता की प्रत्यंचा बनाइए। आप जितने अधिक व्यस्त हैं उतने ही अधिक काम कर सकते हैं, क्योंकि एक काम से दूसरे में परिवर्तन भी एक प्रकार का विश्राम ही होता है, जबकि 100% विश्राम कुछ समय बाद अपने दुष्परिणामों के साथ निराशादायक हो जाता है। व्यस्तता के समय में नियमित और सतत होकर अवसरानुकूल कार्य करें, लेकिन अपनी क्षमता को पहचान कर अति से बचने के सूत्र को भी ध्यान में रखें। तो मित्रों, हमारे इस अंतिम सूत्र तनाव को प्रत्यंचा बना लें के साथ आज का ये विमर्श संपन्न होता है। 2 खंडों में प्रकाशित इस श्रृंखला के सूत्रों को अपनाकर आप अपने प्रत्यक्ष और परोक्ष समय बचाने के साथ साथ अपने कार्य की गुणवत्ता को भी बढ़ा सकते हैं। यदि आप पहले से ही समय के सदुपयोग के कुछ सूत्रों का प्रयोग करते रहे हैं तो उन्हें हमारे साथ साझा कीजिए, ताकि अन्य पाठक भी उनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।